नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा संबंधी सूचनाओं को आम जनमानस तक समय और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल फोन पर अलर्ट जारी किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले में वनाग्नि की घटनाओं के मद्देनजर वन संरक्षक टीआर बीजूलाल ने विभिन्न क्रू स्टेशनों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पौड़ी जिले में आम जनमानस को पेयजल और सीवर से जुड़ी शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज सेल ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली के माध्यम से एक परीक्षण अलर्ट जारी किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में स्थापित आपातकालीन सूचना प्रसारण प्रणाली की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना है कि आपदा की स्थिति में चेतावनी संदेश समयबद्ध व व्यापक रूप से प्रसारित हो सकें। एक रिपोर्ट।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान और आपदा संबंधी सूचनाओं को आम जनमानस तक समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचाना है, ताकि संभावित आपदाओं के प्रति लोगों को पहले से सचेत किया जा सके और जनधन की हानि को न्यून किया जा सके। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण विभिन्न मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाताओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में किया गया, जिससे यह आकलन किया जा सके कि अलर्ट संदेशों का प्रसारण कितनी प्रभावशीलता से हो रहा है तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में राज्य के नागरिकों को समय रहते सचेत करना है, ताकि वे आवश्यकता के अनुसार सावधानी बरत सकें। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में समय समय पर इस प्रणाली के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह संयुक्त प्रयास राज्य को आपदाओं के प्रति अधिक सजग, सुरक्षित और सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कृषि निदेशक से कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का वास्तविक आकलन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि किसानों को जल्द राहत मिल सके। श्री जोशी ने अधिकारियों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त सर्वे कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार नुकसान का आकलन कर पात्र किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी प्रभावित किसान को राहत से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने सर्वे कार्य को पारदर्शिता और तेजी के साथ करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक यह आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपये हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों को उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। बागेश्वर जिले में वनाग्नि की घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग ने निगरानी और सतर्कता तेज कर दी है। वन संरक्षक व वनाग्नि नोडल अधिकारी टीआर बीजूलाल ने बागेश्वर वन प्रभाग के विभिन्न क्रू स्टेशनों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए फायर वॉचर की सक्रियता, स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग और त्वरित सूचना तंत्र बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगजनी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब पिछले 2 दिन से मैं ऐसे नोडल ऑफिसर बागेश्वर में पेट्रोलिंग कर रहा है डीएफओ साहब के साथ और टीम के साथ, और मैं आउट ऑफ 31 क्रूज स्टेशन हमने 6 क्रूज स्टेशन का निरीक्षण कर दिया और मास्टर कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया था, तो फायर वॉचेस वगैरह से और गांव वालों से भी इंटरेक्शन किया।
श्री बीजूलाल ने जौलकांड क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक कर पिरूल एकत्र करने पर विभागीय दर से भुगतान की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इससे वनाग्नि की घटनाओं में कमी आएगी और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि के साथ वे वन संरक्षण में भागीदारी निभा सकेंगे।
कलेक्शन का एक अभियान के रूप से पिरूल कलेक्शन के लिए आज एक मीटिंग था, तो उसमें गांव वालों के साथ था। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट इनके साथ साथ पिरूल का निस्तारण करना है, उसमें कुछ रेवेन्यू भी इनको मिलेगा गांव वालों को। जब पिरूल कलेक्शन होगा तो फिर वो कोई बदमाश लोग बिल्कुल आग लगाने का हिम्मत नहीं होगा, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं।
पौड़ी जिले में गर्मी के दौरान पेयजल और सीवर संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जल संस्थान द्वारा शाखा स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को सक्रिय किया गया है। इससे आमजन और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता प्रवीण सैनी ने बताया कि पौड़ी शाखा में कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 01368220015 है। इसके अलावा कोटद्वार शाखा में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 01382222219 है। इन नंबरों पर प्राप्त शिकायतों को तुरंत संबंधित अभियंताओं तक पहुंचाया जाएगा और उनके द्वारा त्वरित निस्तारण कर रिपोर्ट कंट्रोल रूम में दी जाएगी। सभी कंट्रोल रूम में शिकायतों के पंजीकरण के लिए अलग पंजिका रखी जाएगी, ताकि प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड दर्ज हो सके और पारदर्शिता बनी रह सके। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे पेयजल या सीवर से जुड़ी किसी भी समस्या के संबंधित कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं, जिससे समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। टिहरी जिले में घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पिलखी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। पहले यह अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित होता था, जिसे जन आंदोलन के बाद उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। वर्तमान में पुराने भवन को ध्वस्त कर नए आधुनिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल के बनने से घनसाली के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. उषा भट्ट ने कहा कि जल्द ही अस्थायी भवन तैयार कर मरीजों को वहां शिफ्ट किया जाएगा, ताकि इलाज में कोई बाधा न आए।
तो अस्थायी रूप से अस्पताल चलाने के लिए जो बात हुई थी डिपार्टमेंट से, वो हमारा लगभग 80% तैयार है। अस्पताल के पीछे की तरफ ही जो जगह है, वहाँ पर हमारा जो अस्थायी रूप से जहाँ पर हमें अस्पताल आगे चलाना होगा वो वहाँ पर होगा। उसके अलावा जो ध्वस्तीकरण का जो प्रोसीजर था, जो पुरानी बिल्डिंग, जो पुरानी इमारत है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें नई अस्पताल बन के तैयार मिल जाएगा।
मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। राज्य के शीर्ष जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग ने आज प्रदेश के सभी पर्वतीय जिलों में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा संबंधी सूचनाओं को आम जनमानस तक समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल फोन पर अलर्ट जारी किया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले में वनाग्नि की घटनाओं के मद्देनजर वन संरक्षक TR बीजूलाल ने विभिन्न क्रूज स्टेशनों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पौड़ी जिले में आमजन की पेयजल और सीवर से जुड़ी शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।